ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विश्व जल दिवस पर हिम नदी संरक्षण के नारे के साथ विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। स्वास्थ्यकर्मियों को श्रम आयन द्वारा निर्धारित से कम वेतन देने वाले अस्पतालों को संबंधन खारिज करने की स्वास्थ्य मंत्री पौड़ेल ने दी चेतावनी। प्रदेशों और स्थानीय तहों को और मजबूत बनाने की बात पर सभामुख देवराज घिमरे ने दिया जोर। और नाइजर स्थित एक मस्जिद पर हुए हमले में 44 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। हिमनदी संरक्षण के मूल नारे के साथ नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर विश्व जल दिवस मनाया गया। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, बारिश के ढांचे में आए परिवर्तन, अत्यधिक जल प्रयोग समेत कई वजहों से उत्पन्न हो रहे जल संकट के संदर्भ में इस दिवस के महत्वपूर्ण सीख मिलने का विश्वास जताया गया है। पिछले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदियां सूखती गई हैं और इससे मानव जीवन और समग्र प्रकृति के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। इस आत्मबोध के साथ इस बार जल दिवस का मूल नारा ही हिमनदी संरक्षण रखा गया है। ज्ञात हो कि सन 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाए जाने वाला ये दिवस सुरक्षित और स्वच्छ जल के महत्व पर केन्द्रित संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वव्यापी पहल है। जल दिवस के अवसर से जोड़कर काठमांडू में शुरू हुए प्रथम पानी सम्मेलन 2081 का ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन यापन के साथ ही देश की समृद्धि के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पानी और इसके स्रोत के संरक्षण के लिए सभी नागरिकों को सक्रिय होना होगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि पूर्व विशिष्टों को सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। नेपाली कांग्रेस बांके द्वारा आज नेपालगंज में आयोजित कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री पौड़ेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व विशिष्टों को मान सम्मान देना ठीक है, लेकिन सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि संघ और प्रदेश दोनों ही तहों में सांसदों की संख्या को घटाकर आर्थिक मितव्ययिता अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संघीय संसद में सांसदों की संख्या 275 से घटाकर 201 कर देनी चाहिए और प्रदेश स्तर में सांसदों की संख्या 40% कम कर देनी चाहिए। सभामुख देवराज घिमरे ने कहा कि संघीयता क्रियान्वयन के लिए निरंतर बहस और संवाद अपरिहार्य है। प्रदेश सुशासन केंद्र बागमती द्वारा आज ललितपुर में आयोजित विमर्श में सभामुख घिमरे ने ये बात कही। उन्होंने प्रदेशों और स्थानीय तहों को संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक प्रणाली का मेरुदंड बताते हुए कहा कि उन्हें और मजबूत बनाने की जरूरत है। मौसम में आए परिवर्तन के साथ ही बाजुरा में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बाजुरा जिला मुख्यालय मारतड़ी के जिला अस्पताल के प्रमुख डॉ. चंद्रशेखर यादव ने बताया कि यहीं पर दैनिक 35 से अधिक मरीज आते हैं। उन्होंने बताया कि मौसम में परिवर्तन के साथ ही तेज हवा के कारण धूल धुआं उड़ने से फैले प्रदूषण से संक्रमण की दर में बढ़ोतरी हो रही है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि मौलिक संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र को प्रवर्धन करने के हिसाब से निर्माण होने वाले चलचित्र को सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग और सहजीकरण किया जाएगा। आज 8वां नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव में उन्होंने कहा कि गुणस्तरीय चलचित्र का निर्माण किया जाए तो विदेशी से स्वदेशी चलचित्र प्रति दर्शकों का आकर्षण अधिक होगा। मंत्री पांडे ने कहा कि चलचित्र कर्मियों को विगत के विषय वस्तु और संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर विश्वव्यापीकरण की सोच रखनी चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G।
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि गणतंत्र का विकल्प अन्य कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। आज नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व के गैंडाकोट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गणतंत्र में कुछ नहीं हुआ ये कहकर किया जा रहा प्रचार गलत है। उन्होंने कहा कि नेपाल में मौजूद अपार संभावनाओं की पहचान कर क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर जुटी हुई है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि माओवादी कमजोर होने से प्रतिगामी तत्व पांव फैलाने लगे हैं। आज जनता के साथ माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान अंतर्गत चितवन में आयोजित जन जागरण सभा में उन्होंने कहा कि अब माओवादी 2064 साल में हासिल किए चुनावी परिणाम को पुनः प्राप्त करने की ओर जुटी हुई है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिकर्मी माथवर सिंह बस्नेत के निधन प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। नेपाल में लोकतंत्र स्थापना पार्टी संगठन तथा पत्रकारिता क्षेत्र में स्वर्गीय बस्नेत द्वारा पहुंचाए गए योगदान का स्मरण करते हुए सभापति देउवा ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण किया। बता दें कि बस्नेत को हृदयघात के कारण 79 वर्ष के उम्र में आज सुबह काठमांडू स्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार बस्नेत की आज ही पशुपति घाट में अंत्येष्टि की गई है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक गणतंत्र का विकल्प नहीं है। आज नेपाली कांग्रेस तनहू जिला कार्य समिति द्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेंट में उन्होंने वर्तमान व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सिरहा के औरही गांव पालिका 5 में महायज्ञ के नाम पर जातीय भेदभाव की घटना के पीड़ित परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख एवं पुलिस अधीक्षक रमेश पंडित ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित की ओर से शिकायत प्राप्त हो गई है, इससे कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाना आसान हो गया है। पीड़ित परिवार के दीपक मरित ने दलित नेताओं के साथ मिलकर जातिगत भेदभाव और छुआछूत की शिकायत दर्ज कराई है और ग्राम प्रधान शिवजी यादव, पूर्व वार्ड अध्यक्ष दिलीप यादव और बजरंगी बाबा को प्रतिवादी बनाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश नाइजर के पश्चिम हिस्से में एक गांव पर जिहादी समूह द्वारा किए गए एक हमले में कम से कम 44 नागरिकों की मौत हो गई है। यह हमला शुक्रवार दोपहर फम्बिता गांव में हुआ जो कोको रोड की ग्रामीण इलाके में स्थित है और माली तथा बुर्किना फासो की सीमा के करीब है। मंत्रालय ने अपने बयान में इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेट सहारा EIGS को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, दोपहर करीब 2 बजे जब मुस्लिम उपासक शुक्रवार की नमाज अदा कर रहे थे तब भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने मस्जिद को घेर लिया और अत्यधिक क्रूरता से नरसंहार को अंजाम दिया। इसके अलावा बंदूकधारियों ने एक बाजार और कई घरों में आग लगा दी और फिर मौके से फरार हो गए। मंत्रालय के अनुसार इस हमले में अब तक कम से कम 44 नागरिकों की मौत हो चुकी है जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। नाइजर, बुर्किना फासो और माली पिछले 1 दशक से जिहादी समूहों के खिलाफ संघर्ष झेल रहे हैं जिनमें अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व जल दिवस पर हिमनदी संरक्षण के नारे के साथ विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। संचार कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों को श्रम आयन द्वारा निर्धारित से वेतन कम देने वाले अस्पतालों का संबंधन खारिज करने की स्वास्थ्य मंत्री पौड़ेल ने दी चेतावनी। प्रदेशों और स्थानीय तहों को और मजबूत बनाने की बात पर सभामुख देवराज घिमरे ने दिया जोर। और नाइजर स्थित एक मस्जिद पर हुए हमले में 44 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।